एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक स्तंभ एक गीत 100 अफसाने में आप सभी श्रोताओं को संज्ञा का नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आज के इस अंक में। आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के चार्टबस्टर गीत तुझे देखा तो ये जाना सनम से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। लंबे समय से यश चोपड़ा की फिल्मों में संगीत देते आ रहे संगीतकार जोड़ी शिव हरी के बजाय जतिन ललित को इस फिल्म में क्यों लिया गया? शाहरुख के लिए इस फिल्म में मुख्य रूप से उदित नारायण को चुने जाने के बावजूद फिल्म के इस महत्वपूर्ण गीत के लिए कुमार सानू की आवाज क्यों ली गई? इस गीत के फिल्मांकन में कैसी गड़बड़ी महसूस की जा सकती है? ये सब और इस फिल्म से संबंधित कुछ और जानकारियां आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे आपके लिए प्रस्तुत कर रही है सुजाता शुक्ला।
हिंदी सिनेमा के इतिहास के सुनहरे पन्नों में जिन फिल्मों का शुमार होता है उनमें से एक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे हम और आप प्यार से DDLJ कहकर बुलाते हैं। फिल्मों में रोमांस हर दौर में, हर युग में अपने समय के हिसाब से करवट लेता रहा है। 90 के दशक में शाहरुख खान और काजोल का ऑन स्क्रीन रोमांस इस फिल्म में सर चढ़कर बोला, जो इसके बाद की फिल्मों के लिए ट्रेंड सेटर सिद्ध हुआ। 1995 में प्रदर्शित इस फिल्म ने अब तक 1300 से अधिक सप्ताह पूरे कर लिए हैं मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में। कोविड के कारण सिनेमाघर बंद होने वाले अंतराल को अगर अलग रखें तो पिछले 25 वर्षों से ये फिल्म लगातार हर रोज प्रदर्शित होती चली आई है इस थिएटर में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म की कामयाबी में इसके हर पहलू का बराबर का हाथ है। फिल्म की हर बात निराली लगती है, सब कुछ जैसे बिल्कुल परफेक्ट। फिल्म के गीत संगीत का पक्ष भी आधुनिक पर बेहद सुरीला था। एक तरफ आनंद बख्शी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज कलाकार, वहीं दूसरी ओर जतिन ललित, कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत जैसे उस दौर के अग्रणी कलाकार। जेनरेशन गैप के चंगुल में ना फंसते हुए दोनों पीढ़ियों द्वारा ऐसा काम हुआ कि फिल्म के गाने आज 25 साल बाद भी उतने ही चाव से सुने जाते हैं। यूं तो यश चोपड़ा की फिल्मों का गीत संगीत हमेशा से ही सर चढ़कर बोलता रहा है, पर DDLJ के गीतों ने तो लोकप्रियता की सारी हदें पार कर दी। फिल्म के सातों गीत सुपर डुपर हिट और एक से बढ़कर एक। इनमें से कौन सा गीत किससे बेहतर है ये तय कर पाना आसान काम नहीं था। सात अलग मूड के इन सात गीतों ने एल्बम को विविधता प्रदान की है। भले फिल्म के संगीतकार जतिन ललित के लिए ये फिल्म किसी वरदान से कम नहीं थी, पर उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड AR रहमान की झोली में चला गया फिल्म रंगीला के लिए। DDLJ के अलावा अन्य नामांकन थे अकेले हम, अकेले तुम, राजा और करण अर्जुन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कांटे की टक्कर रही होगी, पर जतिन ललित को DDLJ के लिए लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिला कि जो हर पुरस्कार से बढ़कर था। कुछ वर्ष पूर्व BBC एशिया ने एक मतदान कराया था। इसमें लोगों से सर्वश्रेष्ठ हिंदी म्यूजिकल फिल्म के लिए अपना मत व्यक्त करने को कहा गया था। इस मतदान के आखिरी चरण में कुल 40 फिल्मों का चयन हुआ, जिनमें मुगले आजम, तीसरी मंजिल, गाइड, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है आदि फिल्में थीं। और जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल फिल्म का खिताब मिला वो फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हालांकि ये विषय विवादास्पद है, पर जैसा मतदान हुआ उसी के आधार पर ये बात सामने आई थी। खैर, यश चोपड़ा DDLJ से पहले की अपनी फिल्मों में शिव हरी से संगीत ले रहे थे। सिलसिला, फासले, विजय, लम्हे, चांदनी और डर जैसी फिल्मों में इस जोड़ी का संगीत था, लेकिन डीडीएलजे में यश जी कुछ नयापन चाह रहे थे, एक नया यूथफुल फ्लेवर जैसा पहले कभी न सुनने को मिला हो फिल्मी गीतों में, और जो उस समय और पीढ़ी के अनुरूप हो। डीडीएलजे की कहानी, पार्श्व चरित्रों और ओवरऑल पैकेज को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि इसके संगीत का जिम्मा नए पौध के किसी सुरीले संगीतकार को दिया जाना चाहिए, और तब जतिन ललित का चयन हुआ, जो उन दिनों बेहद सुरीला पर जवां दिलों को छूने वाला संगीत फिल्मों में दे रहे थे। यारा दिलदारा, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, राजू बन गया जेंटलमैन और कभी हाँ कभी ना जैसे फिल्मों में सुपरहिट संगीत देकर जतिन ललित शीर्ष के संगीतकारों की श्रेणी में जा बसे थे। पर जब यशराज फिल्म्स की तरफ से उन्हें डीडीएलजे में संगीत देने का मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके दो मुख्य कारण थे, एक तो यश चोपड़ा की फिल्म में संगीत देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और दूसरा ये कि इस फिल्म में उन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लता जी के साथ जतिन ललित की ये पहली फिल्म थी। जतिन ललित ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इस फिल्म के गीतों को बनाते समय उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये गाने इतने ज्यादा लोकप्रिय बन जाएंगे। फिल्मों के सभी गीत कैसे इतने अच्छे बन गए ये उन्हें पता ही नहीं चला, और आज तक उन्हें ये एक सपना जैसा लगता है। ललित पंडित ने कहा है कि इस फिल्म के गीतों को पहले लिखा गया था और उसके बाद उनकी धुनें बनी हैं। गीतों के इंटरल्यूड म्यूजिक को रिचार्ड मित्र, अरेंजर बाबुल और ललित पंडित ने बनाया था। और अब आते हैं इस फिल्म के उस गीत पर जो आज के इस अंक का विषय है। जी हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। लोकप्रियता की सारी सीमाएं लांघता हुआ ये गीत काउंट डाउन शोज पर न जाने कितने हफ्तों तक पहले पायदान पर राज किया। फिल्मी गीतों के इतिहास में दशकवार श्रेष्ठ रोमांटिक गीतों की सूची जब बनाई जाएगी तब उसमें इस गीत का जिक्र भी जरूर आएगा। गीतकार आनंद बख्शी के सीधे सच्चे शब्द लोगों के दिल में ऐसे उतर गए कि पिछले 25 सालों से निरंतर सुनते रहने के बावजूद इस गीत से ऊब नहीं गए। बख्शी साहब को इस गीत के लिए उस साल सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इससे पहले उन्हें केवल दो बार ये पुरस्कार मिला था, फिल्म अपनापन के आदमी मुसाफिर है और एक दूजे के लिए फिल्म के तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना है गीतों के लिए। डीडीएलजे के लिए शाहरुख खान के पार्श्व गायन के लिए उदित नारायण की आवाज तय हुई थी, और अधिकांश गीतों में उदित जी की ही आवाज सुनाई दी है, पर दो गीत ऐसे हैं जिनमें अभिजीत और कुमार सानू की आवाजें हैं, जरा सा झूम लूं मैं गीत की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जिनमें नायक नायिका गलती से शराब पीकर झूमते हैं। ऐसी मादकता भरी सिचुएशन के मद्देनजर गीत को उत्तेजक बनाने के लिए उदित नारायण के बजाय अभिजीत की आवाज ली गई और लता जी के बदले आशा जी की आवाज। इस गीत की बात तो ठीक है, पर तुझे देखा तो ये जाना सनम के लिए उदित नारायण के स्थान पर कुमार सानू की आवाज को क्यों चुना गया, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल बात ऐसी थी कि इस गीत की शुरुआत तुझे शब्द से होती है और उदित नारायण का झ अक्षर का उच्चारण कुछ ऐसा सुनाई देता है जैसे वो झ नहीं बल्कि ज़ह गा रहे हों। नेपाली होने की वजह से ऐसा होना संभव है, और तो और गीत बिना किसी साज के खाली जबान से इसी शब्द तुझे से शुरू होते हैं। ऐसे में अगर उदित नारायण से ये गीत गवाया जाए तो पहला ही शब्द लोगों के कानों को चुभेगा और हो सकता है कि इसका मजाक बनाया जाए। कुल मिलाकर ये उदित नारायण की आवाज में तुझे शब्द का उच्चारण ठीक न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि गीत को कुमार सानू से गवाया जाए। वैसे उदित नारायण को मेहंदी लगा के रखना गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जरूर मिला था। अब बात इस गीत के फिल्मांकन की। गीत फिल्माया गया था पीले सरसों के खेतों पर फिल्मांकन में कंटिन्यूटी की गड़बड़ी जरूर देखी जा सकती है। गीत शुरू होने के ठीक पहले सिमरन हरे घास वाले खेत में खड़ी है, पर अगले ही शॉट में वो पीले फूलों के खेत से दौड़ने लग पड़ती है। खैर, जो हिट है वही फिट है। तुझे देखा तो ये जाना, सनम से संबंधित एक अंतिम जानकारी ये है कि 1998 की फिल्म प्यार तो होना ही था में जतिन ललित ने लगभग इसी धुन पर कंपोज किया था, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है, जिसे आशा भोसले और उदित नारायण ने गाया था और एक बार फिर काजोल पर ही फिल्माया गया था। पर इस फिल्म को वो ख्याति नहीं मिली जो ख्याति तुझे देखा को मिली। तो इस तरह से एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी होती है पूरी। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अपनी राय अवश्य हमें बताएं। आपको बता दें, रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस स्तंभ के लिए शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के अंक को समाप्त करने की मुझे यानी सुजाता शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।